الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سلاس میں ہم اپنے حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ دروس امور خانداری میں حسن انتظام میں سے پڑھتے ہیں، اور انہی کو جو ہے وہ آگے مزید سمجھاتے ہیں، اس کی تشریحات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو اس سلسلہ دروس کے اندر ہم ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، یعنی امور خانہ کا جو موضوع تھا، اس کو ہم پڑھ کے مکمل کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد پھر مطلب انتظام خانہ کا جو ہے وہ موضوع مکمل کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد رشتہ داریاں نبھانا، یعنی ریلیشن شپ مینجمنٹ، وہ موضوع بھی پچھلے ہفتے پڑھ کے مکمل کر لیا تھا. اور آج جو ہے وہ نیند کا نظم، یعنی سلیپ مینجمنٹ، یہ والا موضوع پڑھنا انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. یہ جو موضوع ہے، جیسے کہ آپ میں سے کچھ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ موضوع جو ہے وہ ہماری دیگر مجالس کے اندر بھی کافی زیادہ چل رہا ہے. ویسے تو اس سے پہلے سے بھی چل ہی رہا تھا، لیکن اس میں زیادہ شدت یا زیادہ زور جو ہے وہ اس رمضان المبارک کے دوران آیا، اور اس کی باقاعدہ کچھ وجوہات بھی بنی، کچھ اس کا پس منظر بھی ہے. اور رمضان المبارک میں ہم نے اس کو جو درس تفسیر کی کلاسز ہوا کرتی تھیں تو ان کے اندر بھی بیان کیا تھا، اور ہمارے جو الگ مجالس وغیرہ کچھ ہوئی ہیں تو ان کے اندر بھی بیان کیا تھا. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک تھیم جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بنی ہوئی تھی ریسنٹلی ہی. تو جب یہ عاجز یہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی اب ریلیشن شپ مینجمنٹ کا جو موضوع ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو اب اس کے بعد اگلا موضوع کون سا ہم پک کریں اس کتاب کے اندر سے، تو قدرتن، یعنی اللہ کی قدرت سے. قدرتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت سے نظر جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر پڑی، نیند کا نظم، سلیپ مینجمنٹ. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایز ایف اٹ واز پری ڈیسائڈیڈ، پہلے سے گویا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا تھا. ظاہر اللہ کیا تو ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اسی کو پڑھنے کا پھر فیصلہ کر لیا ہم نے بھی اپنے بس ہاتھ میں جو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہم نے کیا فیصلے کرنے، فیصلے تو اللہ نے کرنے ہوتے ہیں. تو سلیپ مینجمنٹ کا موضوع جو ہے ان شاء اللہ آج ہم شروع کریں گے. اس میں حضرت نے اپنا جو عنوان باندھا تھا تو اس کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے. تو فرمایا کہ آج کا موضوع، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سلیپ مینجمنٹ، نیند کا نظم. یعنی نیند کا نظم بنانا، مینجمنٹ، یہ تو ایک انتظام کے معنی میں آئے گا اس کا، ٹھیک ہے، تو نیند کا انتظام کرنا وغیرہ، یہ جیرنڈ ہے نا، یہ ING فارم بنتی ہے اس کی. بہرحال عورت کی زندگی میں، کیونکہ یہ جو سلسلہ دروس تھے یہ عورتوں کے لیے تھے خصوصی طور پر، مرد بھی سنتے تھے لیکن جو پرائم آڈینس تھی، جو مخاطب تھے، مخاطبین تھیں، وہ خواتین تھیں. تو فرماتے ہیں کہ عورت کی زندگی میں نیند کا ایک اہم کردار ہے. اگر نیند پوری نہ ہو تو اس کے دن کے کام متاثر ہوتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور پھر بچوں کی تربیت پر بھی برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نیند پوری نہ ہو، नींद पूरी ना हो। पूरी पूरी खाने की चीज को भी पूरी कहा जाता है, ठीक है। हलवा पूरी का नाश्ता आप लोगों ने भी किया होगा, तो यहाँ पर पूरी से क्या वो मुराद है कि नींद पूरी ना हो बल्कि कचौरी हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसकी मुराद जो है यहाँ पर खाने वाली पूरी मुराद नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो पूरी का मतलब क्या है कि कंप्लीट ना हो ना, मुकम्मल ना हो। तो भाई मुकम्मल का मतलब क्या होता है, पूरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो पूरी का कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, मुकम्मल होने का कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई कितने, जैसे घंटों का हिसाब जब इंसान ने कर लिया, दिन को घंटों में डिवाइड कर लिया। पहले तो ये घंटे वंटे नहीं होते थे ना, ठीक है, घड़ियां तो इजाद नहीं हुई थी, तो दिन जो है वो घंटों के हिसाब से नहीं हम मेजर करते थे। बस ये है कि सूरज निकला, फिर इससे लेकर के अगला सूरज निकला, तो वो गोया कि एक दिन हो गया, ठीक है। लेकिन फिर घंटों में डिवाइड किया तो पता चला, अच्छा जी हमने, पता तो खैर नहीं चला, लेकिन हमने बना लिया इस तरीके से कि 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। फिर घड़ियां ईजाद हुई, उनके अंदर जो है वो मिनट्स डिफाइन किए गए, तो ये डिफाइन कर लिया इंसानों ने कि 60 मिनट जो है ना वो गुजरेंगे तो वो एक घंटा कहलाएगा। अच्छा मिनट क्या चीज होती है, तो उसको डिफाइन कर लिया इंसानों ने कि 60 सेकंड गुजरेंगे तो वो एक मिनट कहलाएगा, हम उसको 1 मिनट कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इतना टाइम, इतना वक्त, इतना दौरानिया गुजरेगा तो वो 1 सेकंड कहलाएगा, फिर इतने सेकंड गुजरेंगे तो वो 1 मिनट कहलाएगा, फिर इतने मिनट गुजरेंगे तो फिर वो एक घंटा कहलाएगा, और इतने घंटे गुजरेंगे तो हम उसको एक दिन कहेंगे, ठीक है। ये सेकंड, ये मिनट, ये दिन, ये अल्फाज, ये अल्लाह ताला ने इंसानों से कॉइन करवाए, इंसानों से बनवाए, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने इंसानों के वास्ते से ये सेकंड, मिनट और घंटा और दिन डिफाइन करवाए, ये तो इंसानों के वास्ते से करवाए, लेकिन बिला वास्ता अल्लाह ताला ने खुद क्या काम किया जिसमें इंसानों का वास्ता इस्तेमाल नहीं किया। बिला वास्ता अल्लाह ताला ने क्या काम किया, अल्लाह ताला ने सूरज निकलवाना और सूरज को ढलवाना, ठीक है, और चांद का निकलना और चांद का ढलना, ये अल्लाह ताला ने इंसानों के वास्ते से नहीं करवाए, ठीक है। ये काम अल्लाह ताला ने इंसानों से नहीं करवाए कि अच्छा चलो इंसानों के ही हवाले कर दिया कि अब तुम ही जो है ना वो सूरज को तुलू भी करवाओ, और फिर तुम ही जो है वो सूरज को गुरूब भी करवाओ, फिर तुम इसके बाद मुताबिक जो है वो सेकंड और मिनट्स और आवर्स और डे भी डिफाइन कर लो। नहीं, ये अल्लाह ताला ने इंसानों से नहीं करवाया, ठीक है। अल्लाह ताला चाहते तो इंसानों से करवा सकते थे, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल्स, कोई मैकेनिज्म दे सकते थे कि ताकि तुम सूरज और चांद को कंट्रोल कर लो, उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर लो, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अच्छा अल्लाह ताला चाहते तो सेकंड्स भी खुद ही डिफाइन करवा सकते थे, मिनट्स भी खुद ही डिफाइन करवा सकते थे, ठीक है। खुद ही डिफाइन यानी कि ये बता सकते थे कि भाई ये सेकंड होता है, ये मिनट होता है, ये होता है और ये दिन होता है, घंटा होता है, ये दिन होता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया बल्कि इंसानों से करवाया। ये हम सारी बातें आपको क्यों बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आपको पहले से पता है सारी बातें, लेकिन कभी सोचा था इनके बारे में, ठीक है। पता तो आपको पहले से ये वाली बात, लेकिन कभी इस तरह से सोचा था, देखो कुछ काम जो है ना अल्लाह ताला इंसानों से करवाते हैं और कुछ काम जो है वो अल्लाह ताला अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला का निजाम है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह ताला के निजाम को समझने के लिए ये बात हमें समझनी जरूरी है कि कुछ काम हमसे करवाते हैं, कुछ काम खुद करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है, ताकि हमें अल्लाह ताला याद रहे और हम भूल ना जाए कि भाई ये तो अल्लाह ताला ने ये कुछ खुद किया है और ये अल्लाह ताला ने हमसे करवाया है। हम भूल जाते हैं ना अल्लाह ताला को, हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि हम सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। या और भी और तो कुछ खैर कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि हम सारा काम कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह ताला ने जो है ना वो ये सिस्टम बनाया, ठीक है। दिन अल्लाह ताला ने बनाया, रात अल्लाह ताला ने बनाई, हमने नहीं बनाया, ठीक है। सेकंड्स, आवर्स को डिफाइन कर लेना, ये दिन और रात बनाना नहीं है, ये दिन और रात बनाना नहीं है, वो तो पहले से अल्लाह ताला ने बना के रखे हुए हैं। ये तो खाली उनको जो है ना, वो बस उनको नंबर्स दे देना है जो कि अल्लाह ताला ने हमसे करवा लिया। ठीक है, तो अब कितने घंटे की नींद होती है, बात घंटे से शुरू हुई थी ना, कितने घंटे होंगे नींद के तो वो नींद पूरी कहलवाएगी। ठीक है, तो अब ये कौन डिफाइन करेगा कि नींद पूरी हो जाएगी, ये भी निजाम जो है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा। ठीक है, ये भी निजाम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा कि हमारी नींद पूरी जो है वो अल्लाह के निजाम के मुताबिक जब होगी तब वो पूरी होगी। अगर हमारे निजाम के मुताबिक नींद को आप मैनेज करेंगे तो वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, अगर हम अपने हिसाब से नींद को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वाला काम जो है ना वो भी अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में नहीं रखा बल्कि अपने हाथ में रखा। क्या मतलब कि जिस तरह सूरज अल्लाह ताला की ही मर्जी से निकलता है, अल्लाह ताला की मर्जी से गुरूब होता है, और चांद भी ऐसे ही, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी तरीके से हमारे अंदर का जो निजाम है, सूरज चांद हमारे बाहर की चीजें हैं, बाहर का निजाम है, लेकिन एक निजाम पूरा का पूरा हमारे अंदर भी चल रहा है, वो भी हमारे हाथ में नहीं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं। ठीक है, जिस तरह बाहर का निजाम हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसी तरीके से हमारे अंदर का निजाम भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये आपको बताना मकसूद था। ठीक है, बल्कि ये बात याद करवानी मकसूद थी कि जिसकी वजह से ये सारी तमहीद बांधी। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने बंधवाई। ठीक है, हमारे अंदर का निजाम भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो अगर नींद पूरी ना हो, यानी अल्लाह के निजाम के मुताबिक नींद ना की जाए, इस जुमले का मतलब क्या हुआ कि अगर अल्लाह के निजाम के मुताबिक नींद ना की जाए तो क्या होता है, उसके दिन के काम मुतासिर होते हैं, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और फिर बच्चों की तरबियत पर भी बुरा असर पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल खवातीन फौरन जहन में खवातीन के आया होगा, खुसूसन उन खवातीन के जिनके जो या तो बच्चे अभी तक छोटे हैं, ठीक है, या उनके बच्चे जो हैं वो छोटे थे अब थोड़े से बड़े हो गए, या ज्यादा बड़े हो गए, लेकिन जाहिर है छोटे थे तभी तो जाके बड़े हुए हैं ना, ये तो नहीं होता कि बच्चे जो है वो बड़े पैदा हुए हों, पहले छोटे तो थे ना सारे के सारे, सबके बच्चे। ठीक है, तो अब उनके जहन में एक सवाल पैदा होना चाहिए या हुआ होगा यकीनन, कि रात को जो हम जागते हैं तो हम बच्चों की वजह से ही तो जागते हैं। ठीक है, बच्चे ही तो हमें जगाते हैं, वरना तो हम सो रहे होते, है ना, छोटे बच्चों की वजह से ही तो रातों को जागते हैं, अगर बच्चे ना जगा रहे होते तो हम सो रहे होते। ठीक है, तो अब इसके अंदर कितनी हकीकत है, क्या ये बात सही है कि अगर बच्चे जाग रहे, अगर बच्चे ना जगा रहे होते तो हम सो रहे होते। ठीक है, क्या वाकई ये बात सच है, क्योंकि जहन में तो ये बात आती है, और कहाँ से आती है, जहां से भी आती है, शैतान से आए या नफ्स से आए, अपना अपना नफ्स ये बात कह रहा हो, या नाउज बिल्ला हजरत शैतान ये बात कह रहे हूँ हमारे जहन के अंदर, जिसको कि हम वैसे ही नहीं मानते कि शैतान कुछ करता है हमारे साथ। ठीक है, तो जहां से भी ये बात आई, लेकिन ये बात तो आ रही है, तो क्या ये बात वाकई हकीकत है कि अगर बच्चे ना जगाते तो हम सो रहे होते, तो इसकी हकीकत जो है वो हमें पता चल जाती है अपनी जिंदगी के उस दौर को देख करके जब बच्चे थे ही नहीं, जब बच्चे नहीं थे। ठीक है, या अपने गिर्द उन लोगों को देख करके जिनके कोई बच्चे नहीं है, जो उनको जगाते हो रात को। ठीक है, तो जिनके बच्चे नहीं हैं जो उनको रात को जगाएं, तो क्या वो लोग रात को सो रहे होते हैं? और जब हमारे बच्चे नहीं थे जो हमें रात को जगाते, क्या हम उस वक्त रात को सो रहे होते थे? ठीक है, तो एक्सेप्शंस तो होती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस की बुनियाद पर आप रूल्स डिफाइन नहीं करते, तो लिल अक्सर हुक्मुल कुल, तो अक्सरियत को देखा जाता है कि अक्सरियत जो है ना वो रात को जाग रही होती है, और अकलियत जो होती है वो रात को सो रही होती है। तो हकीकत तो ये है ना कि रात को जागने वाले वो बच्चों की वजह से नहीं जाग रहे होते, बच्चों की वजह से तो कुछ लोग जाग रहे होते हैं, ठीक है, बच्चों की वजह से तो कुछ लोग जाग रहे होते हैं, जिनके खास तौर पे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो न्यू बॉर्न बेबीज जो है ना वो कुछ लोगों को अच्छी तरह से जगा रहे होते हैं रात को, वरना वो भी ज्यादातर नहीं जगा रहे होते, लेकिन जगा रहे होते हैं, हम इसको तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चे आर नॉट द ओनली रीजन, ठीक है, और बच्चे तो खाली उन लोगों के लिए रीजन बनते हैं ना जिनके होते हैं और जिनके छोटे होते हैं, बाकियों के क्यों रीजन तो बच्चे नहीं बन रहे होते, ठीक है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि भाई हमारी जो रात को जागने की आदत है ना, इसके रीजंस कुछ और हैं, इसके रीजंस कुछ और हैं। हम बच्चों को ब्लेम करके अपने आप को इससे जो है ना वो मुस्तस्ना नहीं कर सकते, इस गलती से अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दे सकते कि भाई बच्चों पे डाल दो अपना मलबा, अपनी गलती का इल्जाम बच्चों में डाल दो और खुद जो है ना वो उससे बरी उजरमा हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा कि वैसे भी सेहतमंद बच्चे रात को खुद ब खुद सोते हैं, अल्लाह माशाल्लाह। जी, मोबाइल की वजह से जाग रहे होते हैं, आजकल मोबाइल की वजह से जाग रहे होते हैं, लेकिन जब मोबाइल नहीं आया था ना तो उस वक्त भी जाग रहे होते थे, आज तो मोबाइल की वजह से भी जाग रहे होते हैं, लेकिन जब मोबाइल नहीं आया था तो उस वक्त भी जाग रहे होते थे। क्यों जाग रहे होते थे, ये एक अलग सवाल है, क्यों जाग रहे होते थे मोबाइल से पहले भी। तो हजरत ने यहाँ पे फरमाया कि फिर बच्चों की तरबियत पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि तरबियत में जब चिड़चिड़ापन होता है, काम मुतासर हो रहे होते हैं, तो फिर बच्चों की तरबियत इज वन ऑफ द थिंग्स दैट गेट्स अफेक्टेड, ठीक है। तो फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने खाना और पीना जिस्म की जरूरत बना दी है, जिस्म की जरूरत बना दी है, जरूरत किस चीज को कहते हैं, तो नहीं जरूरत के डेफिनेशन आपसे पूछते हैं, जरूरत किस चीज को कहते हैं। जी, गोया किंडर गार्टन की क्लास हो गई, अब ये हमसे जरूरत को भी डिफाइन करवाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने जवाब दिया नीड को कहते हैं। अच्छा, जिसके बिना जिंदगी गुजर बसर ना हो सके, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सके। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जरूरत उस चीज को कहते हैं कि जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सके, गुजारा का मतलब होता है कि जिसके बगैर काम नहीं बन सके, हाँ, जिसके बगैर मुश्किल हो जाए, तो ऐसी चीज को जरूरत कहते हैं, ठीक है। जिसके बगैर यानी जो चीज आपको ना मिले तो फिर मुश्किल हो जाए, जो चीज आपको ना मिले तो फिर काम अटक जाए, गुजर बसर ना हो सके, ये है जरूरत की तारीफ, ठीक है। तो जिस चीज के बगैर गुजारा हो सकता है, जिसकी चीज के बगैर काम चल सकता है, ठीक है, तो फिर वो चीज जो है वो जरूरत में आएगी, वरना तो फिर जरूरत की डेफिनेशन कुछ और बना है, ठीक है, वरना तो फिर जरूरत की डेफिनेशन सही नहीं है। अगर किसी चीज के बगैर गुजारा हो सकता है, काम भी चल सकता है, और मतलब गुजारे से मुराद यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बस यानी किसी ना किसी तरह गुजारा हो सके, बल्कि एक नॉर्मल तरीके से काम चल रहा हो, ठीक है, तो वो चीज अगर उसमें से निकाल निकाल दी जाए तो फिर नॉर्मल तरीके से काम ना हो सके, बल्कि एबनॉर्मल तरीके से या तो काम करना पड़े या जो है वो मुश्किल तरीके से काम करना पड़े, ठीक है, तो फिर उस चीज को जरूरत कहा जाएगा कि भाई इससे इसके होने की वजह से नॉर्मल काम होता है, वरना फिर एबनॉर्मल काम करना पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, ऐसी चीजों को जो है ना वो जरूरत कहा जाता है। बिल्कुल ही काम बंद हो जाए, जिस चीज के बगैर बिल्कुल ही काम बंद हो जाए और बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, उसको जरूरत नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है, उसको मजबूरी कहा जाता है, मजबूरी, ठीक है, उसको मजबूरी कहा जाता है उर्दू जुबान के मुहावरे के अंदर, सही है, जिसके बगैर बिल्कुल ही काम बंद हो जाए और बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, तो ऐसी चीज को मजबूरी कहा जाता है, और जरूरत उससे कम दर्जे की चीज है, जिसके बगैर काम मुश्किल हो जाए और जिसके बगैर काम जो है वो नॉर्मल तरीके से ना हो सके, ऐसी चीज को जो है ना वो जरूरत कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने ना खाना और पीना जिस्म की जरूरत बना दी, ठीक है। तो यहां पर लफ्ज जरूरत जो हजरत ने लिखा है ना, ये दरअसल मजबूरी के मानी में है, बमाने मजबूरी, ठीक है, बमाने मजबूरी के खाने पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। 3 दिन तक तो जरूरत है खाना, लेकिन 3 दिन के बाद जो है ना ये हमारी मजबूरी है कि खाना पड़ेगा वरना मर जाएंगे, ठीक है, खाना पड़ेगा वरना मर जाएंगे। ये लोगों ने अपने तहकीक वगैरह से 3 दिन का निकाला है कि भाई 3 दिन तक रह सकते हो, 3 दिन के बाद जो है ना मर जाओगे। तो 3 दिन तक जरूरत है, 3 दिन के बाद खाना पीना हमारी मजबूरी है। तो उसी तरीके से थके हुए बदन को भी जो है ना वो नींद की जरूरत होती है। तो ये भी इसी तरीके से ही है कि नींद जो है ना वो कुछ अरसे तक तो आप इसको डिले करते रहें तो वो आपकी जरूरत कहलाएगी, और बिलाखिर एक वक्त आएगा कि जब वो आपकी मजबूरी बन जाएगी, यानी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सोए बगैर गुजारा कर, ठीक है, तो फिर वो मजबूरी बन जाएगी, नहीं सोना तो पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तक जो है ना ये जरूरत रहती है। तो अब जरूरत जो की डेफिनेशन हमारी क्या बनी थी कि जिसके बगैर काम एब नॉर्मल हो जाए, मुश्किल हो जाए जिस चीज के बगैर। अब नींद अगर आपने पूरी नहीं करी तो आपका काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छी नींद से इंसान की जिंदगी भी अच्छी गुजरती है। औरतों में नींद और कम ख्वाबी की शिकायत आम होती है, इसलिए इसको मुस्तकिल उन्वान बनाया गया कि औरत अपनी नींद का ख्याल कैसे रखे। बाकायदा 1 घंटे का हजरत ने बयान किया और हमने 1 घंटा तो एक पैराग्राफ के ऊपर तकरीबन लगा देना है आज, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इतनी इंपॉर्टेंट, बल्कि आप हम वो अब हम वो पस मंजर भी बताएं कि जिस पस मंजर की वजह से रमजानुल मुबारक के अंदर काफी ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर बात भी हुई, बल्कि इस टॉपिक की वजह से एक मेजर हमने चेंज भी किया, एक मेजर चेंज अपने प्रोग्राम के अंदर किया। वो क्या कि हमारे पास जो है ना वो एक इंडिया से एक माशाल्लाह अच्छे नौजवान, नौजवान तो खैर नहीं कह सकते, जवान जवान कह सकते हैं, आलिम दीन आए जो कि माशाल्लाह एक बड़ा मदरसा जो है वो चला रहे हैं। उनके वालिद साहब हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा यानी बड़े शेख हैं आज के जमाने के, तो उनका मदरसा है। अब वालिद साहब बहुत ज्यादा जयीफ हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो अब जो ये जवान आलिम दीन है ना ये अब अपने वालिद साहब को मदरसा चलाते हैं, ठीक है। तो वो आए हुए थे तो मुलाकात के लिए भी आए साजिश खतीब से, तो उनसे बैठ के बातचीत हो रही थी। तो बातचीत के दौरान जो है उन्होंने हमें देखा कि हमें पढ़ने के लिए जो है ना वो चश्मे की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, ये आजिज भी जो है वो अब उस उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका है कि जिसमें चश्मे के बगैर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। 50 साल की उम्र ये होती है कि जिसमें फिर आंखें जो है ना वो यानी करीब की जो नजर होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। ये आजिज तो फिर अब 52 का हो चुका है, तो बहरहाल 2 साल से चश्मा लगा हुआ है, चश्मे मतलब चश्मे के बगैर नहीं पढ़ सकते। तो हमने जब चश्मा निकाला ना पढ़ने के लिए तो कहने लगे कि मतलब मैंने ही खुद कहा कि अब तो चश्मे के बगैर पढ़ा नहीं जाता, ऐसे मैंने अपनी तरफ से कमेंट दे दिया। तो फौरन से पूछने लगे कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है। मैंने कहा मेरे मतलब मैं सोचा कि मेरी चश्मे का पासपोर्ट से क्या ताल्लुक। तो खैर जब उन्होंने पूछा तो हमने बता दिया कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो कहने ओहो आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट नहीं है। वो बेचारे समझ रहे थे, जाहिर उनको ये तो पता था कि आज इस पहले काफी अरसा अमरीका में भी रहा था और फिर उसके बाद जो है वो सऊदी अरब आया, तो वो समझ रहे थे कि शायद हमारे पास अमेरिकन सिटीजनशिप होगी, अमेरिकन पासपोर्ट होगा, इस वजह से उन्होंने सवाल पूछा। तो जब मैंने कहा कि नहीं मेरे पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ओहो अच्छा पाकिस्तानी पासपोर्ट, आप किसी तरीके से इंडिया आ जाए, ठीक है। मैंने कहा जरा मुश्किल होगी मुझे इंडिया आना, मतलब यूएस पासपोर्ट होता फिर भी शायद मुश्किल होती क्योंकि बैकग्राउंड तो पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर तो इंडिया आना और भी ज्यादा मुश्किल काम है। और वो भी दाढ़ी वालों के लिए जरा मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने खैर इस तरह से बात उन जरा टालने की कोशिश करेंगे, क्यों इंडिया आ जाए भाई ऐसी बैठे बैठे। कहने असल में इंडिया में एक अस्पताल है कि जिस अस्पताल में जो है ना वो मैं अपने वालिद साहब को लेके गया, उनकी भी नजर का प्रॉब्लम था और इतनी उम्र भी उनकी ज्यादा हो गई, लेकिन उस अस्पताल में जाकर के जो उनका इलाज हुआ है ना उससे उनको बहुत फायदा हुआ है। और इतनी यानी जईफी में भी उनकी नजर जो है ना वो बेहतर हो गई है, हत्ता कि शायद उन्होंने ये भी कहा कि उनका चश्मे की अब उनको जरूरत नहीं है, इस तरह की कोई बात पता नहीं, समथिंग लाइक दैट। बहुत फायदा हुआ उनको उस अस्पताल के इलाज से, तो हमें भी थोड़ी सी दिलचस्पी हुई तो मैंने सुनना शुरू कर दिया, उन्होंने बताना शुरू कर दिया। कहने लगे कि वो अस्पताल है और उसमें अच्छे यानी इतना मेजर अस्पताल है वो, और उसमें इतने मरीज आते हैं कि उस अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर जो है वो उन मरीजों के लिए जगह भी नहीं होती, तो उन्होंने बहुत सारे दूसरे घर भी ले लिए हैं जिनके अंदर वो अपने मरीजों को उन घरों के अंदर ट्रीट करते हैं। तो गोया के पूरे शहर में जो है ना वो अस्पताल इस तरीके से फैल गया है। और उस अस्पताल की खास बात यह है कि एक तो वो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, ठीक है, हर्बल मेडिसिन, और वो जड़ी बूटियां उन्होंने अपने अस्पताल के इर्द गिर्द खेत की जमीनें हैं उनके अंदर ही उन्होंने उगाई भी हैं, तो बिल्कुल फ्रेश जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं इलाज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यही वजह है कि जिसकी वजह से उस अस्पताल का कोई इंडिया से बाहर ब्रांच नहीं है, वरना तो मिडिल ईस्ट के अंदर फॉरन ब्रांचेस खुलती हैं। तो कहने लगे नहीं कोई ब्रांच ही नहीं है उसकी, तो इस वजह से आप वहां जाकर के इलाज करवा नहीं सकते, आपको इंडिया ही आना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा, और फिर कहने लगे कि उस अस्पताल में वो लोग करते क्या हैं कि जितने मरीज वहां पे एडमिट होते हैं ना तो उन मरीजों को नंबर वन दिन में जागने नहीं देते, दिन के वक्त में जागने नहीं देते, और रात के वक्त में सॉरी दिन के वक्त में जागने लौटा बोल रहा हूँ, दिन के वक्त में सोने नहीं देते और रात के वक्त में जागने नहीं देते, ठीक है, दिन के वक्त में सोने नहीं देते और रात के वक्त में जागने नहीं देते। दिन में अगर कोई सोना चाहे ना तो उसको जगाते हैं, और बहुत ज्यादा किसी को नींद आए तो उसको कहते हैं कि तुम कुर्सी में बैठे बैठे सो, ठीक है, कुर्सी में बैठे बैठे सो जाओ, यानी थोड़ी देर की बस कर लो और फिर उठ जाओ, ठीक है, ये उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा है। अच्छा, उन्होंने पूछा ये अस्पताल किस सिटी में है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कौन सी सिटी का नाम लिया था, लेकिन साउथ इंडिया में मुझे याद आ रहा है, साउथ इंडिया में कहीं था शायद केरला में, या आई थिंक केरला ही कह रहे थे, बहरहाल तो वो आपको बाद में पूछ के बता देंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, रात में जागने नहीं देते, तो रात में क्या होता है कि 7 बजे के करीब जो है ना वहां पे खाना बाकायदा कैफेटेरिया में खाना लगता है सारे मरीजों को, और मरीजों के जो अटेंडेंट्स उनके साथ आए हुए होते हैं ना, जैसे ये अपने वाले साहब के साथ वहां पे ठहरे थे जाकर के, ठीक है, तो अटेंडेंट्स और मरीज दोनों को उसी वक्त में खाना खाना होता है। अगर आप थोड़ी सी देर से वहां पहुंचे ना तो खाना खत्म हो चुका होगा, खाना नहीं मिलेगा, भूखा भूखे रहना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ना वो सुलाने के लिए लाइट्स ऑफ, जिस तरह किसी मिलिट्री एकेडमी के अंदर या किसी कैडेट कॉलेज के अंदर सुलाया जाता है ना लाइट्स वगैरह बंद करके, उस तरीके से वहां पे सुलाया जाता है, और किसी को जागने की इजाजत नहीं होती या दूसरों को जगाने की इजाजत नहीं होती, बिल्कुल दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, जब मैंने ये बातें सुनी ना उनकी तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल तरीन काम है, ठीक है, ये तो इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। और फिर मेरे दिल में अजीब बात आई, मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है कि इस वक्त जो है ना इस वक्त दुनिया के अंदर ये करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम, कि इस बात पे लोगों को कन्विंस कर लेना और इस बात के ऊपर खुद भी अमल करना शुरू कर देना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। हत्ता के आप लोगों को जो रेगुलरली क्लासेस वगैरह हमारी लेते हैं तो उनको अंदाजा होगा कि इस आजिस का बहुत ज्यादा जो है ना वो फोकस दो इंतहाई अहम तरीन उमूर के ऊपर है, जो कि ऐसे ही है कि जैसे कि यानी गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, ठीक है, पूरी दुनिया एक फ्लो की तरफ जा रही है और बिल्कुल जो ये बातें आजस करता है वो बिल्कुल उसके खिलाफ होती है। वो कौन से दो ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर ये आजस बहुत ज्यादा बात करता है लेकिन बहुत ज्यादा इसके ऊपर अलहमदुल्ला अल्लाह ताला ने काम करने की तौफीक अता फरमाई, और बात तो करते थे उसके बाद ही जो है वो काम करने की तौफीक अता फरमाई। बात से बात शुरू होती है ना, फिर उसके बाद काम की नौबत बाद में आती है, ठीक है। अगर बात ही ना करें तो फिर काम कैसे करेंगे, तो बात पहले करनी पड़ी पढ़नी होती है। वो दो कौन से थे? नंबर वन, इन्होंने खुद ही लिख दिया, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। स्कूल का जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे दुश्मनों का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है। इसके अंदर से पढ़ करके नेक मुसलमान, हत्ता के नेक अच्छे इंडियन और पाकिस्तानी भी नहीं बन के निकल सकते। मुसलमान तो क्या खाक बन के निकलेंगे स्कूल सिस्टम में से। तो एक है एजुकेशन सिस्टम, और दूसरा है कि औरत का किरदार जो अल्लाह ने बनाया है, औरत का किरदार जो अल्लाह ने बनाया है, जिन्होंने लिखा डिफाइनिंग द करेक्ट रोल ऑफ मेन एंड वेमेन, जो किरदार अल्लाह ने बनाया है ना, उस किरदार के मुताबिक जो है वो उनकी तरबियत भी करना, उनकी तालीम भी उसी किरदार के मुताबिक होनी चाहिए जो अल्लाह ने किरदार बनाया है, ठीक है। तो ये दो इंतहाई मुश्किल तरीन मौजूदात हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, जिसको के अच्छे खासे लोग जो है ना बिल्कुल इग्नोर करके दीन का काम कर रहे होते हैं, इन दोनों बातों को। हाँ भाई, ये दोनों बातें जो है ना ये तो साइड में रखो, चलो जरा हज उमरे की बातें करते हैं और नमाजों की बातें करते हैं और तहज्जुद की बातें करते हैं और अल्लाह की मोहब्बत की बातें और फलाने की बातें और ढमकाने की बातें, इन दोनों बातों को बिल्कुल साइड पर रख दो, इनको किसी तरीके से इग्नोर कर दो, ठीक है। तो हजरत जी रहमतुल्लाह ने रात को जागने से सख्ती से मना करी। जी, बिल्कुल अभी बात आती है उसके ऊपर इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये दो बातें जो है ना वो इंतहाई सख्त है, इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, गो या कि पूरा का पूरा एक बड़ा दरिया एक डायरेक्शन में चल रहा है और आप दरिया के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस रात को जब ये मौलाना साहब से बात हो रही थी, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे लगता है कि रात के साइकिल को दुरुस्त करना, नींद के साइकिल को दुरुस्त करना और लोगों को इसके ऊपर तैयार करना, ये एजुकेशन सिस्टम और रोल ऑफ मेन एंड वेमेन को करेक्ट करने से भी ज्यादा मुश्किल काम, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। ये चीज सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इस वक्त, ठीक है। तो इतना ज्यादा इस वक्त दुनिया के अंदर ये सिस्टम जो है ना वो स्टैब्लिश हो चुका है कि जो कि इवन यानी एजुकेशन सिस्टम की भी बात करें ना आप कुछ लोगों से, तो जो अकले सलीम वाले और फितरत वाले, अच्छी फितरत वाले लोग होते हैं, वो बात समझ जाते हैं, वो बात मान जाते हैं, ठीक है। अमल करने में उनको मुश्किल होती है, टाइम लगता है इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जाने में और थोड़ा सा तब्दीलियां करने में टाइम लगता है, लेकिन कन्विंस हो जाते हैं लोग, ठीक है। उसी तरीके से जो है ना वो रोल ऑफ मेन एंड वेमेन, वो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हो गए हैं लोग बहुत सारे तैयार। लेकिन ये वाला जो काम है ना, इसके लिए समझने के तैयारी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो बात उनसे हो गई ना। अच्छा, जब ये बात हो गई, जब वो चले गए, तो उसके बाद जो है ना मुझे अल्लाह ताला ने एक अजीब बात दिल में डाली। मैंने कहा कि कल जो है ना, अगले दिन यानी उसके अगले दिन जो है वो हमने एक कयामुल लैल का प्रोग्राम रखा था अपने नौजवान साथियों के लिए, कयामुल लैल बॉयज के लिए, ठीक है। तो वो रमजान मुबारक का महीना था जी, रात को जागेंगे और जाग करके जो है ना वो हम इबादतें भी करेंगे और ये भी करेंगे और वो भी करेंगे और ये भी करेंगे हैं, और फजर के वक्त जो है ना फिर जाके हम सोएंगे, तो कयामुल लैल करेंगे हम रात को, ठीक है। अल्लाह तआला ने ऐसा दिल के अंदर जो है ना वो बात डाली कि यार ये तो बिल्कुल ही तुम उल्टी बात कर रहे हो खुद ही, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम फैक्टर ये भी था कि उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हॉस्पिटल है ना इंडिया के अंदर, ये कोई मुसलमानों का हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि ये गैर मुस्लिमों का हॉस्पिटल या हिंदुओं का हॉस्पिटल। जब उन्होंने ये बात कही है ना, तो ये और ज्यादा अटक गई कि यार कितनी शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि जो हमारे जो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जिसके ऊपर हमें अल्लाह के पैगामात बताए, ठीक है। कुरान मजीद किसका है? अल्लाह ताला का कलाम है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह का कलाम जो हमें मिला, तो उसके अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वजअलना नौमकुम सुबाता, कि हमने तुम्हारी नींद को जो है वो तुम्हारे लिए आराम का सबब बनाया। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, और रात को जो है ना वो हमने लिबास बनाया। लिबास से यहाँ पे इसकी तफसीर क्या होती है कि जिसको कि इंसान ओढ़ लेता है, ठीक है। तो नींद, ये रात जो है वो पूरे जमाने के ऊपर एक लिबास की तरीके से ये ओढ़ जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है। वजअलना नहारा माशा, और काम का जो वक्त है वो हमने दिन को बनाया, काम का वक्त हमने दिन को बनाया। तो काम का वक्त रात को क्यों बना रहे हो तुम? काम का वक्त तो हमने दिन को बनाया, और रात का जो वक्त है वो तो आराम का वक्त है, सुबात का जो वक्त है। तुम्हारी रात, तुम्हारी नींद को हमने सुबात बनाया, ठीक है। उसी तरीके से हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के जो बाअदब बानसीब की जो किताब है उसके अंदर से कुदरतन हमने रमजान मुबारक से एक मजलिस पहले ही ये वाली बात पढ़ी थी, आदाब ख्वाब के अंदर। आदाब ख्वाब, हजरत ने लिखा कि इंसान की नींद अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है। वमिन आयाति ही मनामकुम बिल्लैल, यानी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक तुम्हारा रात को सोना है। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी क्या है? तुम्हारा रात को सोना। वमिन आयाति ही, और उसके आयात में से है, मनामकुम, तुम्हारी नींदें बिल्लैल, रात के वक्त में, ठीक है। अच्छा, निशानी ये कैसे? अल्लाह ताला की निशानी रात को सोना, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, मान लिया हमने, बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो ऑफकोर्स सही है। लेकिन हाउ, इसकी कोई तौजीह, कोई वजह, कोई रीजनिंग आप बता सकते हैं? आपसे अगर हम सवाल करें कि अगर सोचें इसके ऊपर कि अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी ये कैसे है रात को हमारा सोना, तो कोई अगर जवाब देना चाहे इसका। क्योंकि अल्लाह नहीं सोता। बहुत अच्छी बात करी वैसे आपने, ठीक है, अल्लाह ताला नहीं सोता, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे सोने का अल्लाह ताला की निशानियों से क्या ताल्लुक? निशानी किस चीज को कहते हैं? छोटी मौत होती है ये, ठीक है, ये भी चले, अच्छा जवाब है। छोटी मौत होती है कि अल्लाह ताला इस तरीके से सुला देते हैं, फिर अल्लाह ताला इस तरीके से जगा देते हैं, ठीक है, तो ये भी चले एक अच्छी, अच्छा जवाब है, छोटी मौत होती है हमारी, ठीक है, यानी मौत की हालत में जा करके वापस वापस आ जाते हैं, अपनी मर्जी से तो नहीं आते ना, अल्लाह ताला उठाते हैं, यानी हमें कोई कोई दूसरा उठाता है ना, ठीक है, चाहे वो कोई भी रीजन बने, अलार्म उठाए, कोई बंदा उठाए, या जो है वो कोई और सोच उठाए, लेकिन अच्छा दूसरी को और कोई बताए, अल्लाह के हाथ में मौत देना है और नींद छोटी मौत ही है जी। जिंदगी और मौत, फिर से जिंदगी, हम कमजोर हैं, ठीक है, हम कमजोर हैं, यानी हम जब हम थक जाते हैं और हमारे ऊपर नींद गालिब आ जाती है तो फिर हम, हमारी मर्जी फिर उसके बाद नहीं चलती, ठीक है, ये बहुत अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा जवाब है कि हम कितने कमजोर, ठीक है, कि जब थकन हम पर गालिब आ जाती है तो अगरचे कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हम काम नहीं कर पा रहे होते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद हम पे गालिब आ जाती है, बार बार नींद ये झपकियां आ रही होती हैं, और हम पढ़ना चाह रहे होते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, तो ये हमारी कमजोरी की निशानी है, ठीक है। और अल्लाह ने हमारी बॉडी उस हिसाब से बनाई है, हार्मोन रिलीज होते हैं जो रात में सोने में हेल्प करते हैं, इस तरह मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलती है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है, वही तो पूछ रहे हैं कि कौन सी निशानी है। तो हॉर्मोन्स का सिस्टम इंसानी जिस्म में अल्लाह ने इस तरह से बनाया है कि हम रात को सो जाते हैं, सबको एक साथ सुला देना ये अल्लाह के, अल्लाह ही कर सकते हैं, वरना इंसान आराम के वक्त के का मुतय्यन नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी बात हमने मार्फुल कुरान की तफसीर की क्लासेस के अंदर पढ़ी थी कि सबको एक वक्त में अल्लाह ताला जो सुला देते हैं ना, एक खास रीजन के सब लोगों को सुला देते हैं, जहां पे वक्त जहां पे रात आती है, तो ये अल्लाह ताला इस तरीके से जो है ना वो इन्फोर्स कर देते हैं इसको। वेन वी स्लीप आवर बॉडी रिपेयर्स इट सेल्फ, ठीक है। तो माशाल्लाह ये सारी जो है ना वो निशानियां हैं बेशक, ठीक है। लेकिन देखें इसको अगर हम इस अंदाज से भी देखें कि निशानी किस चीज को कहते हैं, आयत किस चीज को कहते हैं, जो किसी की तरफ पॉइंट करती है ना, ठीक है, किसी की तरफ पॉइंट करती है, यानी जिस चीज को देख करके आपको कोई और याद आए, दलालत भी कहते हैं ना उसको अरबी के अंदर। दलालत का मतलब होता है पॉइंटर। तो नींद की निशानी, ये अल्लाह ताला की निशानी कैसी है, नींद अल्लाह की निशानी कैसी है कि देखें वही बात कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये चीज फोर्स कर दी है, ठीक है, कि हमें सोना है। अब सोने से क्या होता है कि जो काम हमने करने होते हैं ना वो काम अब हम नहीं कर सकते, जो काम हम करना चाहते हैं या जो काम हमें करने होते हैं वो काम हम नींद के दौरान नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब मशीनरी बना ली गई है तो हम सो रहे होते हैं लेकिन मशीन्स काम कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन मशीन के अंदर भी अगर किसी इंटरप्शन की या अगर किसी कस्टमाइजेशन की, कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है जो कि हमने करनी थी, अब वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखें अल्लाह ताला सोने के जरिए से हमें एक चीज दिखा रहे हैं, हमें एक चीज बता रहे हैं कि देखो तुमने काम नहीं करने। ये काम जो होते हैं ना, काम, दुनिया का जो काम चल रहा होता है, ये काम तुमने नहीं करना है, ये करने वाली जात मैं हूं, ठीक है, ये करने वाली जात मैं हूं, अल्लाह ताला, ठीक है। तुमने क्या करना है, बस जितनी मैंने तुम्हारे इस्तेदाद दी है ना या जितना मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई है, तुमने बस उतना ही करना है, तुमने सब कुछ नहीं करना है, तुमने सब कुछ नहीं करना है। यू आर नॉट द वन इन कंट्रोल, यू आर नॉट द वन के हु कैन ड्राइव थिंग्स। तुम ड्राइव नहीं कर सकते, ड्राइव तो मैंने ही करना है, कंट्रोल तो मैंने ही करना है। तुमने तो बस क्या करना है, तुमने तो, हम अपनी कराची की जुबान में बोलते हैं, कार्रवाई डालना, या पाकिस्तान की भी स्लैंग में, या इंडियन भी हो सकता है, कार्रवाई डालना इसको बोलते हैं, कार्रवाई डालना, है ना। कार्रवाई डालने का मतलब क्या होता है, लुक बिजी डू नथिंग, लुक बिजी डू नथिंग, क्या मतलब, बस कुछ करते रहो, कुछ करते रहो ताकि देखने वालों को लगे कि तुम कुछ कर रहे हो, हालांकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो। यू आर नॉट डूइंग समथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग वर्थ वाइल, ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कुछ बस करना है, देखो कार्रवाई डालना, ठीक है ना, असल काम तो कोई और कर रहा है, ये तो कार्रवाई डाल रहे हैं, यही हकीकत है। असल में काम तो अल्लाह की जात कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस खाना पूरी कर रहे हैं, हम तो कार्रवाई डाल रहे हैं, ठीक है। हमें तो बस जो एक छोटा सा एक तो टास्क असाइन किया गया ना, जिसको फराइज कहा जाता है, जिसको फराइज कहा जाता है, या जिसको हुकूक की अदायगी कहा जाता है, असल में हुकूक की अदायगी, ठीक है ना, हम तो बस वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम ठीक से नहीं कर रहे, वो भी हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो हम नमाजें पढ़ करके, वो भी पता नहीं कौन पढ़ता भी है कौन नहीं पढ़ता, लेकिन जो नमाजी है माशाल्लाह पक्का नमाजी है तो वो ज्यादा से ज्यादा फर्ज नमाजें पढ़ लेता है। लेकिन क्या ये सिर्फ ये तो हमारे ऊपर हुकूक नहीं थे, फर्ज नमाजें पढ़ लेना तो हमारे ऊपर हुकूक नहीं थे, हमारे ऊपर तो हर चीज ही कितने सारे हुकूक हैं, ठीक है। इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, वह इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन और इन्ना लिज़ैफिका अलैका हक्कन, ठीक है, कि हमारे ऊपर तो हर एक के हुकूक है ना। वलिज़ैफिका अलैका हक्कन व इन्ना लिअहलिका अलैका हक्कन, है हमारे ऊपर हमारे साथ रहने वाले लोगों के हुकूक हैं, हमारे ऊपर जो है वो हमारे पड़ोसियों के हुकूक हैं, वलिरब्बिका अलैका हक्कन, हमारे ऊपर रब के हुकूक हैं, ठीक है, और हमारे ऊपर इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन, ठीक है। तो हम तो हुकूक की अदायगी जो हमारे जिम्मे लगाई गई है ना, हम तो ये कर रहे हैं और वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर नींद गालिब आती है हम वो भी नहीं कर पाते, तो अल्लाह ताला फिर कंप्लीटली टेक्स ओवर फ्रॉम अस, कंप्लीटली टेक्स ओवर फ्रॉम अस, और हमें जो है ना वो फिर अल्लाह ताला सुला देते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ निशानी है, पॉइंटर टू अल्लाह, कि भाई अल्लाह इज इन कंट्रोल, अल्लाह इज द वन हु डज इट, ठीक है ना। और हम क्या है, हमारी अब्दियत के ऊपर दलालत है या हमारी मजबूरी के ऊपर दलालत है, ठीक है ना। अब्दियत बमाने यहां पर यानी अनवर्दीनेस, वर्दी ऑफ नथिंग, इसके ऊपर ये दलालत है, नीड, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना बमाने आजिजी, ठीक है, बल्कि हाँ यानी आजिजी का लफ्ज ज्यादा मुनासिब है यहां पर, कि आजिजी का मतलब होता है हार, फेलियर, फेलियर, हार जाना, ठीक है ना। इसके ऊपर चला था कि वी आर कंप्लीट फेलियर्स, ठीक है, वी आर नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, लेकिन कंपेयर टू हूम, अल्लाह, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की जो है ना वो निशानियों में से एक निशानी, ये तो अब अदर जी के पहले वाला जो जुमला है इस टॉपिक के ऊपर, फरमाया कि अल्लाह ताला की निशानियों में से एक तुम्हारा रात को सोना है, तो दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, वजअलना नौमकुम सुबातन वजअलना लैल, ये हम बानसीब में से पढ़ रहे हैं। तो इस आयत का भी क्या तर्जुमा कि हमने नींद को तुम्हारे लिए आराम, रात को पर्दा और दिन को कारोबार का जरिया बनाया। इन आयात से मालूम होता है कि नींद के लिए रात का वक्त और कारोबार जिंदगी के लिए दिन का वक्त बनाया गया है, यही फितरत इंसानी का तकाजा है, यही फितरत इंसानी। ये फितरत क्या चीज होती है, ये फितरत वो चीज होती है जो कि अल्लाह ने बनाई, ठीक है, जो कि इंसान के रग रग रेशे रेशे के अंदर पैवस्त करके अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। जिस तरह आटे के अंदर नमक को आप मिक्स करके आटे को गूंध देते हैं ना, अब वो नमक उसका हिस्सा बन जाता है, वो उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज को फितरत कहा जाता है, ये फितरत है इंसानी, अल्लाह की बनाई हुई है, और इसका तकाजा जो है वो नींद है। आराम तलब लोग, हजरत जी के अल्फाज बाअदब बानसीब में से, आराम तलब लोग दिन को रात, और ऐश पसंद लोग रात को दिन की तरह गुजारते हैं, ठीक है। वो होता है ना कि हम माशाल्लाह सूफी लोग बड़ी अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं, हजरत से भी सुना, कि अल्लाह ताला की अताअत करना ये नबियों का काम है, और अल्लाह की नाफरमानी करना ये शैतान का काम है। तो जब हम अल्लाह की अताअत करते हैं तो हम नबी तो नहीं बन जाते, लेकिन नबियों के रास्ते पे चलने वाले बन जाते हैं, और जब हम अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी कर रहे होते हैं तो हम शैतान तो नहीं बन जाते, लेकिन शैतान के रास्ते पे चलने वाले बन जाते हैं। तो यही उसूल यहां पर भी अप्लाई होता है कि दिन के वक्त काम करना ये नबियों का तरीका है, और रात के वक्त जागना ये ऐश पसंद लोगों का तरीका है, ठीक है। ये नेकों का तरीका नहीं है, ये नेकों का शियार नहीं है, रातों को जागना और दिन में जो है वो सो, और उल्टा काम जो है वो, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने की बनाई हुई फितरत है। और फरमाया कि जबकि तलबे सलीम रखने वाले लोग रात का कुछ हिस्सा आराम में और आखिरी हिस्सा याद इलाही में गुजारते हैं। आखिरी हिस्सा यानी तहज्जुद का वक्त जो, उसको याद इलाही में गुजारते हैं, और बाकी वक्त जो है वो सोने में गुजारते हैं, इशा के बाद का, ठीक है। ये आम अल्लाह ताला ने ये उसूल बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस खाली होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस, बहुत कम एक्सेप्शंस। तो एक एक्सेप्शन तो वही हुई जिसमें जिसको कि मजबूरी कहा जाता है, मजबूरी की वजह से रात को जाग, जैसे मिसाल के तौर पर किसी का छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न है, या जो है वो कोई बीमारी, हकीकत में कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो खुद जो है वो रात को नहीं सो पा रहा है, जैसे कि बुढ़ापा भी एक बीमारी होती है, तो बहुत बूढ़े होने के बाद ये साइकिल जो है वो अपसेट हो जाता है, तो क्योंकि वो बीमारी है इस वजह से, या कोई घर के अंदर बीमार है उसकी वजह से है वो जागना पड़ रहा है, छोटा बच्चा जो है वो रात को अगर उठ गया है तो उसकी वजह से माँ को जागना पड़ रहा है, ठीक है। नाइट ड्यूटी वाले, जैसे उन्होंने लिखा डायरेक्ट मैसेज के अंदर, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, नाइट ड्यूटी वाले, ठीक है, तो वो ऐसी कोई नाइट ड्यूटी है कि जो के आपके लिए लाजमी है, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं, फॉर व्हाटएवर रीजंस आपका गुजारा नहीं, तो नाइट ड्यूटी, ठीक है। और ये नाइट ड्यूटी जो है ये आज के दौर की सारी इजाद नहीं है, बल्कि पुराने जमाने में भी नाइट ड्यूटी किसकी होती थी? पहरेदारों की। ठीक है, जो वॉच गार्ड्स होते थे ना पुराने जमाने में भी, जब ये लाइट बल्ब इजाद नहीं हुए थे, ठीक है, द जाली सिस्टम वॉज नॉट इन प्लेस, तो उस वक्त भी नाइट ड्यूटी का सिस्टम होता था। तो वो नाइट ड्यूटी पहरेदारों की होती थी, वो पहरेदार जो है वो रात को जाग रहे होते थे, क्योंकि उस वक्त जो है ना वो बाकी लोग आराम से सोएंगे ही उस वक्त जब ये पहरेदार साहब जो है वो जाग रहे होंगे, वरना तो वे सारे ही मारे जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ रूहानी पहरेदार टाइप के जो लोग होते हैं, जैसे हमारे हजीर रहमतुल्लाह रहते, ठीक है, रूहानी पहरेदार, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो रात को उनको जागना पड़ता है। और उसकी बड़ी तफसीली तफसील से उसके ऊपर बात की जा सकती है कि उनकी फिर ये मजबूरी होती है रात को जागना। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम बाकी लोगों को कहते थे कि इशा के बाद नहीं करो कोई काम, इशा के बाद जो है वो सो जाओ, अवामुन नास को कहते थे। ठीक है, खुद नबी अलैहिस्सलाम का अमल किया था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो इशा के बाद कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठ करके गुफ्तगू शुनीद किया करते थे, कभी जो है वो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठ करके जो है वो बात किया किया करते थे। ठीक है, और कभी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो शामिल हो जाया करते थे। तो ये लोग कौन थे? ये एक्सेप्शन थे, ये पहरेदार थे। ठीक है, ये फिजिकल पहरेदार नहीं थे, ये इंटेलेक्चुअल पहरेदार थे, ये रूहानी पहरेदार थे। ठीक है, तो ये पहरेदार जो है ना ये रात को दीनी मसाइल पे गौर खास के लिए, दीनी यानी जो उम्मत के जो हालात हैं उनके ऊपर डिस्कशन के लिए, या ये कि इवन इबादत के लिए, अल्लाह ताला से राज व न्याज के लिए भी ये लोग सारी सारी रात जागा करते थे। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर हम अपने आप को कयास नहीं कर सकते, इनके ऊपर हम अवामुन नास को कयास नहीं कर सकते। अवाम की मजबूरी यह है कि उसको सोना पड़ेगा, वो सोने बगैर सोए बगैर जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है, आज का आज के बड़े मसलों में से एक बहुत बड़ा मसला क्या है? एक तो ये हो गया ना कि रात को सोते नहीं है, जाग रहे होते हैं। एक ये हो गया कि काफिर का बनाया हुआ, दुश्मन का बनाया हुआ तालीमी निजाम उसको जो है वो अपनी निजात का सबब बन करके बैठे हुए सारे के सारे। ये बहुत बड़ा मसला है आज का। ठीक है ना, आज का बहुत बड़ा मसला क्या है कि अल्लाह ताला ने औरत को एक अलग रोल लगाया था जिंदगी में, जिंदगी फंक्शनैलिटीज अलग बनाई थी, मर्द की अलग फंक्शनैलिटीज बनाई थी, और शैतान ने जो है वो इनको गड़बड़ कर दिया। ठीक है, और रोल्स जो है वो एक्सचेंज करवा दिए, रोल्स जो है वो ओवरलैप करवा दिए। तो ये आज के बहुत बड़े बड़े मसलों में से ये चंद मसले आपके सामने बयान किए। लेकिन एक और बहुत बड़ा मसला जिसका ताल्लुक जो है वो इस वाली बात से जो हम अभी कर रहे थे कि हम अपने आप को मशाइख पर कयास नहीं कर सकते, हम अपने आप को जो है वो उन लोगों के ऊपर कयास नहीं कर सकते कि चूंकि वो करते हैं इस वजह से हम भी करते हैं। तो आज के बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला क्या है कि हम करते हैं, हम करना शुरू हो गए कि जब वो कोई काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम वही काम क्यों नहीं कर सकते। जैसे कल ही जो है वो किसी से बात हो रही थी कि शेख साहब ने अगर इस तरह से कोई काम किया है, ठीक है ना, जो कि जरा नॉर्म से हट करके था, वो भी यही बात हो रही थी, नॉर्म से हट करके जो है वो शेख साहब ने काम किया, तो अब उसके ऊपर जो है वो नौजवान है जिसके पास शेख साहब के मुकाबले में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप को शेख साहब नहीं कह रहा, मैं किसी और शेख साहब का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, जिसका कि वो नौजवान ने क्या कहा कि शेख साहब ने जब ऐसे काम किया तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम, अल्लाह के बंदे या अल्लाह की बंदी है, ये शेख साहब का जो इल्म है, शेख साहब का जो तजुर्बा है, शेख साहब का जो पोजिशन है, शेख साहब का जो जॉब रोल है, क्या वो तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी सेम है, क्या तुम्हारे पास भी उतना ही इल्म है जितना शेख साहब के पास इल्म है, क्या तुम्हारा भी वही जॉब रोल है जो शेख साहब का जॉब रोल है, क्या तुम्हारे पास भी वही तजुर्बा और मुशाहिदा है जो कि शेख साहब के पास है, तो तुम अपने आप को शेख साहब पे कैसे कयास कर सकती हो। ये मेरे सामने कोई अहवाल बयान कर रहा था किसी के, कि उन्होंने ये कहा कि जब शेख साहब ऐसा काम कर सकते हैं तो हम ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आज के दौर के डिलेमास में से बहुत सारे डिलेमास हैं, दज्जाली दौर है ना, तो कोई एक आध डिलेमा तो नहीं होगा ना दज्जाली दौर का, दज्जाली दौर तो सबसे बड़ा फितना है, तो एक आध डिलेमास को थोड़ी होंगे, बहुत सारे डिलेमास होंगे। तो उनमें से एक डिलेमा क्या है कि हम रिजालुन व नहनु रिजालुन है, ये वाला वो कहते हैं ना कि अगर उमर फारूक ने रजी अल्लाह तआला ने ऐसे काम किया तो वो भी तो बंदे थे और हम भी तो बंदे हैं, तो दो उन्होंने क्या वही हम भी करेंगे, तो भाई अल्लाह के बंदे वो और तुमने क्या, जमीन आसमान का फर्क ठीक है। उसी तरीके से शेख साहब ने जो क्या वही काम हम भी करेंगे, वो भाई ऐसे नहीं होता ठीक है, ये आप मतलब नहीं कर सकते इस तरीके से, और बड़े दलील है इसके ऊपर, लेकिन शैतान ऐसा इंसान को जो है वो डालता है कि भी अपने आप को जो है ना वो बड़ों के ऊपर कयास करना शुरू कर देते हैं। तो भाई वो जो अगर रात को जागते भी है ना तो उनको एक्सेप्शन के तौर पे लिया जाएगा, उनको रूल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। तो वो हमें नसीहत क्या कर रहे हैं, वो हमें समझा क्या रहे हैं, हमें तो उसको फॉलो करना। इसी वजह से ना इवन नबी अलैहिस्सलाम के भी हर अमल की तकलीद नहीं की जा सकती ठीक है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया वो हम भी करना शुरू करते हैं। तो भाई नबी अलैहिस्सलाम की ताकत, नबी अलैहिस्सलाम का रोल, नबी अलैहिस्सलाम का इल्म, नबी अलैहिस्सलाम का हर चीज कितनी ज्यादा थी, हम हर चीज की जो आप कह रहे हैं करने के लिए वो हमें करना होगा ठीक है। तो जो हजरत जी कह रहे हैं कि भाई यही फितरत इंसानी का तकाजा है, आराम तलब लोग दिन को रात और ऐश पसंद लोग रात को दिन की तरह गुजारते हैं, जबकि कल्बे सलीम रखने वाले लोग रात का कुछ हिस्सा आराम में और आखिरी हिस्सा, अगर कुछ हिस्सा से मुराद के कानू कलीलम मिन लैली मा यहजउन, जो डीप स्लीप का जो टाइम अल्लाह ताला ने बनाया है उस हिस्से में वो सो रहे ठीक है, और आखिरी हिस्सा याद इलाही में गुजारते हैं, यानी तहज्जुद के वक्त जो है वो याद इलाही में गुजारते हैं। ऐसे लोगों के मुताल्लिक फरमाया कानू कलीलम मिन लैली मा यहजउन ठीक है, और वो रात का एक पोर्शन होता है कि जिसके अंदर आपकी नींद जो होती है वो गहरी हो जाती है, डीप स्लीप के जो टाइम ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो सोने की कोशिश करते हैं, उसी के अंदर इंसान को पीसफुल स्लीप मिलती है, जिससे कि उसके जो है ना वो बदन की जरूरियात पूरी होती हैं, और फिर तहज्जुद के वक्त में जो है वो नमाज पढ़ता है, फजर के वक्त से आगे लेकर के वो काम करता है ठीक है। बहरहाल ये बातें जो है वो हम जो कर रहे हैं ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं कि हम खुद इस पर अमल नहीं करते, हम खुद इस पर अमल नहीं करते, मैं नहीं करता इसके ऊपर ठीक है। अभी आपका गुमान है, आप समझेंगे कि अच्छा जी ये तो पहरेदारों में से है, इस वजह से नहीं अमल करते हैं, तो आपका अच्छा गुमान है, अल्लाह ताला उस गुमान को पूरा कर दे ठीक है, अल्लाह ताला उस गुमान को पूरा कर दे, हमें पहरेदार बना दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपने बारे में गुमान नहीं है कि हम पहरेदार हैं, इस वजह से हमारे लिए एक्सेप्शन है, तो फिर हम बातें क्यों कर रहे हैं, अपने अमल के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं। तो नहीं आप बता दें, फिर क्लास खत्म नहीं करनी हो, बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्लास, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं खुद इसके ऊपर अमल नहीं करता ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को पहरेदार भी नहीं समझता, आप समझे तो आपका गुमान है, अल्लाह आपको जदाए खैर अता फरमाए और अल्लाह आपके गुमान को पूरा कर दे, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझते पहरेदार, फिर भी जो है वो रात को क्यों जाग रहे होते हैं, तो फिर जब जाग रहे हैं तो फिर हम उसके खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं, जब जाग रहे हैं तो फिर बात क्यों कर रहे हैं, यानी अमल तो गलत कर रहे हैं और बातें बड़ी अच्छी बना रहे हैं, लोगों को बड़ी अच्छी नसीहतें कर रहे हैं, ये तो गलत काम हो गया ना फिर, कि लोगों को तो अच्छी नसीहतें कर रहे हैं खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों, और फिर बता भी रहा हूं मैं आपको क्यों ठीक है। तो इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया है, तो क्या जवाब दिया पढ़ लेते हैं कि आप हमें ठीक करने को जागते हैं, हजरत तो आप हमें ठीक करने को जागते हैं, अच्छा मैं खुद ठीक हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा नहीं, हाँ आप एक्सेप्शन में, आप हमारी इसलाह करते हैं, अच्छा तो ये तो हो गई ना आपकी खुशगुमानी ठीक है, अच्छा असल बात बताएं क्या है, ताकि आदत बन जाए हमारी खैर ख्वाही के लिए ठीक है, और किसी एक का काम करने से वो काम सही नहीं होता, सही नहीं, किसी एक के काम करने से वो काम सही नहीं होती, वो काम सही नहीं, किसी किसी के भी कोई गलत काम कर लेने से वो काम ठीक नहीं हो जाता, चलिए ठीक है वो तो आप बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अल्लाह के अहकाम के लिए, अल्लाह के अहकाम के लिए गलत को गलत कहना इज द फर्स्ट स्टेप, गलत को गलत कहना नहीं, कहना तो दूसरा स्टेप है, गलत को गलत मानना, गलत को गलत तस्लीम करना, गलत को गलत जानना, ये पहला स्टेप। ठीक है, गलत को गलत जानना, गलत को गलत मानना, गलत को गलत तस्लीम करना, ये पहला स्टेप है इस्लाह की तरफ। ये पहला स्टेप है इस्लाह की तरफ। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरों को भी बताना कि ये बात गलत है। बेशक मैं करता हूं लेकिन ये बात गलत है, बेशक मैं करता हूं लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप। इस उम्मीद पर भी ये बात कही जा सकती है कि अल्लाह ताला शायद मेरे इस कहने की वजह से मुझे भी तौफीक अता फरमा दे। ठीक है, शायद अल्लाह ताला मदद फरमा दे, शायद अल्लाह ताला की कुछ मेहरबानी हो जाए। और गलत को गलत समझना और गलत को गलत कहना, इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमा दे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गलत को गलत मानना, जानना और समझना, ये ईमान की हिफाजत की भी शर्त है। ये पता है ना सबको, ईमान की हिफाजत की शर्त है। वो हदीस कभी भी ना भूला करें। आज के दौर में उस हदीस की इतनी अहमियत हो गई है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, कि अगर कोई गलत काम हो रहा हो तो उसको तुम हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में उसको बुरा जानो, क्योंकि इससे नीचे ईमान को कोई दर्जा नहीं। तो गलत को अगर तुम गलत समझना और मानना और जानना छोड़ दोगे तो तुम्हारा ईमान फिर उसके बाद कुछ पता नहीं है, नहीं है, खत्म हो गया ये। ठीक है, तो भाई हम तालीमी निजाम से अपने आप को अगर नहीं निकाल पा रहे या उसको नहीं तब्दील कर पा रहे, लेकिन उसको अच्छा तो ना कहें ना, उसको बुरा कहें, गलत कहें, उसकी गलतियों को पहचाने, जाने, लोगों को भी बताने की कोशिश करें। अगर औरत मर्द के रोल में अगर हम खुद फंसे हुए हैं, हमने खुद जो है वो हमारी जिंदगी जो है वो उलट पुलट हुई भी है, तो अब उसको जस्टिफाई तो ना करें ना कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ऐसी होना जरूरी है, इसके बगैर दुनिया का काम नहीं चल सकता और ये जरूरी है और वो बहुत अच्छी बात है। भाई उसको गलत समझो तो ना कम अज कम यार। ठीक है ना, गलत को गलत समझो तो ना कम अज कम। उसी तरीके से जो है वो नींद का भी निजाम, भाई खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे फॉर वट एवर रीजन, जस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है, जो भी है, लेकिन गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज सबसे बुनियादी और सबसे अहम है। अगर अमल नहीं कर पा रहे तो कम अज कम उसको गलत समझना तो ना मानना छोड़ो ना। ये हमारी दीन की ऐसी बुनियाद है कि जिसके बगैर हमारा दीन यानी ईमान खत्म हो गया तो फिर दीन क्या करोगे, फिर अमाल का क्या करोगे, फिर चटनी अचार बनाना है फिर अमाल का। अगर ईमान खत्म हो गया, गलत को सही कहना शुरू कर दिया तो ईमान खत्म हो गया, अब नमाजों का क्या, अचार डालना है, चटनी बनानी है नमाजों की और उम्रों की और हजों की, क्या करना है फिर उसके बाद। ठीक है, तो ईमान की हिफाजत के लिए ये चीज लाजमी है। तो इस वजह से जो है ना, वो जो भी बात हो जिसके ऊपर हम खुद अमल ना भी कर रहे हो लेकिन उसको गलत समझना जो है ना, ना छोड़ने और जितना हो सके उसको बयान भी करें। ठीक है, अल्लाह ताला से मदद की दुआ भी फरमाते हैं, करते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा दे और हमारे लिए इन गलतियों को ठीक करना अपनी जिंदगी के अंदर और अपने घर बार के अंदर अल्लाह ताला आसान भी फरमा दे। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं, हमारी तो क्या मजबूरी है कि जरा सा हमें नींद आनी शुरू हो जाए हम कामकाज से वैसे ही माजूर हो जाते हैं। हमारी हैसियत ये क्या है, हमने क्या करना है, करना अल्लाह की जात ने है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से मदद की इल्तिजा करते हैं, बाकी अल्लाह ताला के हवाले अल्लाह ताला सब कर सकते हैं। वा आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।